आगे सूरह ज़ुख़रुफ़ है, 43 नंबर की सूरह है, 89 आयात हैं। बनाओ को कहते हैं डेकोर, मेकअप, सजना, संवरना, सोना, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं इस एक लफ्ज़ के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत हामीम सजदा, पहली आयत से 15 तक, 1 to 15, रुकू नंबर 7 है। टॉपिक है बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून। हामीम, कसम इस वाज़ह किताब की, हमने इसको अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया है कि तुम समझ लो, यकीनन ये लोहे महफूज में है और हमारे नज़दीक बुलंद मर्तबा हिकमत वाली है। क्या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। नोट कीजिएगा, और हमने अगले लोगों में भी कितने ही नबी भेजे, जो नबी इनके पास आया उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, बस हमने इनसे ज़्यादा जोरावरों को तबाह कर डाला और अगलों की मिसाल गुजर चुकी है। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमानों ज़मीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन इनका जवाब यही होगा कि इन्हें गालिबो दाना अल्लाह ही ने पैदा किया है, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते कर दिए ताकि तुम राह पा लिया करो। इसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया, बस हमने इस मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इस तरह तुम निकाले जाओगे। जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई और चौपाए जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो। फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब इस पर ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो, यह है जी सवारी की दुआ। सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कहो, पाक ज़ात है उसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हमें इसे काबू में करने की ताकत न थी, और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और उन्होंने अल्लाह के पास बंदों को इसका जुज़ ठहरा दिया। यकीनन इंसान खुला नाशुकरा है। कभी सवारी पे बैठते हुए अपना मुहासबा कीजिएगा, किस मकसद के लिए बैठी हो। ये अल्लाह की नेमतें खैर के कामों में निकलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए निकलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जायज़ कामों के लिए निकलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों की मदद के लिए, उनको राइट देने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सवारी पे बैठ के कोई नाफरमानी का काम गलत मकसद पे करते हैं, तो उस वक्त इस आयत को याद कीजिएगा और अल्लाह ताला हमें खैर के लिए निकाले। ज़िंदगी से ज़्यादा हम मौत के करीब होते हैं सवारी पे। फिर आयत 1 से 4 में देखिए कुरान की खसूसियात। वो किताब जिसके अहकामात वाज़े हैं, जो हक और बातिल का फ़र्क बताती है, जो अपने पढ़ने वाले को हर किस्म के तासुबात से आज़ाद कराती है। तो इस एक किताब में वजाहत भी है, हक और बातिल का फ़र्क भी है, और आज़ाद कर देती है आपको हर तासुब से। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम कुरान पढ़ लो, तुम्हारे सारे फ़िरके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आखिर तो सारे फ़िरके कुरान से ही निकालते हैं ना लोग। फिर इसी तरह आप देखिए कि आयत 10 में ज़मीन की बात थी, किस तरह इंसान ज़मीन पर एक मुशफिक माँ की गोद की तरह चलता फिरता है। माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है ना, इंसान ज़मीन की गोद में है इस वक्त। इसमें आराम करता है, लुत्फ़ भी उठाता है, अपना रिस्क भी इसे हासिल करता है। कभी ज़मीन की तेज़ रफ्तारी की वजह से ना इसने हचकोले खाए ना इसकी रफ्तार में आवाज़ आई। अल्लाह ने इसमें रास्ते बनाकर मंजिल पे पहुंचना आसान कर दिया, और इंसान अगर शऊर रखे तो ज़मीन के रास्तों से हिदायत पाता है। तो इस ज़मीन पे भी कभी गौर कीजिएगा, लेकिन चलते ही कम है, गाड़ियों पे बैठते हैं ज़्यादा। फिर इसके बाद आप देखिए अंदाज़ों की बात हुई आयत 11 में, किस तरह अल्लाह ने अंदाज़े के मुताबिक ज़मीन को पानी पे रखा। अगर पूरी ज़मीन को डिवाइड करें तो 71% वाटर है और 29% पानी है। ज़मीन की तकदीर में जितना पानी है अल्लाह ज़रूरत के मुताबिक इंसानों के सामने लाता है। थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ताला ज़मीन को पानी बख्शता रहता है। बारिश को कतरों की शक्ल में उतारा कि इंसान एकदम बारिश के पानी से परेशान ना हो जाए। इतनी रहमत वाले रब के अहकामात कभी बोझल नहीं हो सकते। अल्लाह हमें इस किताब की कदर की तौफीक दे। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कितने लोग हैं जो सवारी पे बैठते हुए पढ़ते हैं। ये सिर्फ जहाज़ पे बैठने की दुआ तो नहीं है ना, गाड़ी रिक्शे पे भी बैठ के पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, रज़ा इलाही को पाने के काम, ये सारे पीछे जो सुने हैं वो करने हैं, दुआएं पढ़नी है, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا ہے، حد سے نہیں گزرنا، رسولوں کا مذاق نہیں اڑانا اور احسان فراموشی نہیں کرنی. رکوع نمبر 8 16-25، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. امت تخذ مما یخلق بنات، اب یہاں سورت کا جو مضمون تھا تھوڑی سی بات اس پہ جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. پیچھے سورہ نحل میں بیٹیوں کی پیدائش پہ دل جلنے اور چہرے سے آنے کی بات تھی، اب یہاں دوبارہ ہو گیا کہ اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں، نعوذ باللہ، جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کی پیدائش کے موقع پہ یہ سب موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی. اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ صرف اٹکل پچو یعنی جھوٹ باتیں کہتے ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جس سے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں. اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کو ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال یعنی دولت مند کھانے پینے والے لوگ، انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پاک کی پیروی کرنے والے ہیں. نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر یعنی مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے تمہیں دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، بس ہم نے اس سے انتقام لیا اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. کیا پتہ چلا کہ باپ دادا کے نام پہ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور انہی چیزوں پہ رہتے ہیں. آپ کے میرے لیے اس حصے میں جو بات بہت ہی اہم تھی، جو بیچ میں کبھی کبھی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے کہ جو اس صورت میں بات ہے کہ وہ مخلوق جو زیورات میں پلیں. آج کے دور کے اندر ایک چیز جو آ گئی وہ کیا ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح بن گئی، لڑکی اور لڑکے کی تربیت اور اس کے کپڑوں میں فرق نہیں رہا. جب تک چھوٹی چھوٹی بچیاں چمکیلے کپڑے پہنتی تھیں اور آج بھی کبھی عید پہ پہنتی ہیں یا شادیوں پہ کو پہنتی ہیں، تو اس دن آپ اس کو چوڑیاں پہنا دیتے، میک اپ کرا دیتے یا جو کچھ بھی چھوٹا، یعنی لڑکی کی لڑک پن کی بات کرنا چاہتی ہوں. آج جو کپڑے بن گئے بچیوں کے، میں بڑے عورتوں کی نہیں بات کری، بیبیز کے، بچیاں سال دو سال کی، ان کپڑوں پہ زیور اچھا ہی نہیں لگتا. پینٹ کے ساتھ کیا میچنگ کوئی پہنے گا چوڑیاں؟ کوئی بندے بڑے بڑے جھمکے تو نہیں کوئی پہن سکتا نا، کوئی آپ ٹائٹس پہن کے. عورت کی نسوانیت چلی گئی، اور آج زیور پہنا عورت کی کم عقلی اور بے وقوفی کی علامت بنا رہی ہے. ذرا کوئی زیور پہنے کہتے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے زیور پہننا، کیوں بھائی مرد پہنیں گے، مردوں کو چوڑیاں پہنا دی؟ نہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کیا کہا، اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، ہم اس کو زیور پہناتے. تو عورت کے اندر عورت پن رکھی. اس لیے آج کی دیکھیے لڑکی شادی کے بعد مرد کے لیے وہ اٹریکشن نہیں رکھتی. معذرت ہے، مرد کے مقابلے میں ایک دوسرا مرد ہے، سیم سیم کپڑے. تو عورت کی نسوانیت کو قائم رکھیے، یہ ٹریڈیشن بھی ہے اور اس میں سلیقہ بھی ہے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ جیسے کپڑے ہوتے ہیں نا ویسا موڈ ہو جاتا ہے. کھلے دوپٹوں میں بچیاں نماز پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک ماں تھی، اس نے ایک بار میرے سامنے ہی دیکھا کہ اس کی بچیوں نے بڑا پیارا سا ڈریس پہنا، اس نے بنا کے اس کو دیا ہوا، تو دوپٹہ لے کے تو نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی کہ آج ان کپڑوں میں تو جائے نماز پہ آ گئی ہے، عام طور پہ جو ٹائٹس پہنے ہوتے ہیں اس میں بچیاں نہیں آتی. تو اپنی بچیوں کے لباس پہ بچپن سے نظر رکھیں، اس سے پہلے کہ ان کا قد آپ سے لمبا ہو اور پھر آپ روکیں اور وہ رکے نہ. عمل کے نقطے، بیٹی کی پیدائش پہ افسوس نہیں، خوشی کرنی ہے. کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قیاس رائیاں نہیں کرنی، غلط عقائد میں باپ دادا کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنی. رکوع نمبر 9 ہے 26-35، 26-35، دلیل کے ساتھ حق کا راستہ اختیار کریں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اب یہاں سے تھوڑا سا انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہوگا. اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے وہی ہدایت بھی کرے گا، اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. और कहने लगे, ये कुरान इन दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया? क्या आपके रब की रहमत को ये तकसीम करते हैं? हमने ही इनकी दुनिया की ज़िंदगी की रोज़ी इनमें तकसीम की है और एक को दूसरे से बुलंद किया ताकि एक दूसरे को मातहत कर लें। जिसे ये लोग समेटते फिरते हैं, इससे आपके रब की रहमत बहुत ही बेहतर है। क्या कुछ समेटते हैं लोग, सारा दिन जो कुछ समेटते हैं उससे बड़ी चीज़ रहमत है। तो रहमतें समेटिए, और ये रहमतें कुरान से आती हैं। आपकी ज़िंदगी रहमतों से भर जाएगी, आप अपना नाम रहमत बीबी रख लेंगे, इतनी रहमतें आ जाएंगी आपके ऊपर। और अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे, तो रहमान के साथ कुफर करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते, और जीनों को भी जिन पर चढ़ा करते हैं, और इनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगा लगा कर बैठते हैं, और सोने के भी, और ये सब कुछ यूं ही सा दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा है। और आखिरत तो आपके रब के नज़दीक सिर्फ परहेजगारों के लिए ही है। कितनी बड़ी आजमाइश! अल्लाह कहते हैं, काफिर का घर सोने का, उसकी छतें चांदी की, उसकी सीढ़ियाँ चांदी की, तो मुसलमान का घर मिट्टी का। कितने लोग इस्लाम पे कायम रहते हैं? आज मिट्टी के घरों पे ईमान बिक जाता है। नहीं, घर तो लेना है ना चाहे ना फरमानी है, क्या करें? अल्लाह अकबर। तो देखिएगा, अमामुल मुवाहिदीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रोल मॉडल है। इन्होंने अल्लाह की खातिर अपने बाप और अपनी कौम से ताल्लुक़ तोड़ा। अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ अल्लाह की राह में रुकावट बनी उसको कुर्बान करते गए, यहाँ तक कि अपने लख्ते जिगर इस्माइल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह की खातिर अपने घर को वीरान करके अल्लाह के घर को आबाद कर दिया। तो क्यों ना अल्लाह कहे उनको कि अलैहि सलाम वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो अल्लाह ने जो इनको इतने टाइटल दिए हैं ना, इनके पीछे दास्तानें हैं लंबी लंबी, सब्र की, शुक्र की। अल्लाह हमें भी इनके नक्शे पा पे चला दे। क्या सीखा? शिर्क नहीं करना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा पे चलना है। अपनी औलाद को भी वसीयत करनी है कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना बनाए, हक़ की पैरवी करनी है, और अल्लाह के कानून फजीलत पे राजी रहना है। यानी अल्लाह ने जो दे दिया उस पर खुश रहिए, जो नहीं दिया उस पर और भी खुश रहिए। रुकू नंबर 10, 36 से 45 है। कुरान को मजबूती से थामना है। वमैयाशन जिक्र रहमान, और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, हम इस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही इसका साथी रहता है और वो इन्हें राह से रोकते हैं, और इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हिदायत याफ्ता हैं, यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो कहेगा कि काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू तो बड़ा ही बुरा साथी है। और जबकि तुम जालिम ठहर चुके, तो तुम्हें आज हरगिज़ तुम सब का अजाब में शरीक होना कोई नफ़ा ना देगा। क्या बस तू बहरे को सुना सकता है या अंधे को राह दिखा सकता है, और इसे जो खुली गुमराही में हो? बस अगर हम तुझे यहाँ से ले जाएं तो भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं, या जो कुछ इनसे वादा किया जाता है वो तुझे दिखा दें। यानी अजाब हम इन पर भी कुदरत रखते हैं, बस जो वही आपकी तरफ की गई इसे मजबूत थामे रहें, बेशक आप राह रास पर हैं। और यकीन है ये खुदा आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है, और अनकरीब तुम लोग पूछे जाओगे। और हमारे इन नबियों से पूछो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था, कि क्या हमने सवाए रहमान के और माबूद मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत की जाए? क्या सीखा? रहमान के जिक्र से मुंह नहीं मोड़ना, शैतान को अपना दोस्त नहीं बनाना, कुरान पाक को मजबूती से पकड़ना है, सीधे राह पर चलना है। आगे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, रुकू नंबर 11, 46 से 56 है। गुज़श्ता अकवाम के हालात से सबक लेना। वलक़द अरसलना मूसा भी आयातिना, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ देकर फिरौन और इसके उमरा के पास भेजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा कि मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। यानी अपना तारुफ सीधा साधा करवा दिया, लंबी चौड़ी बातें नहीं की। जब वो हमारी निशानियाँ लेकर इनके पास आए तो वो बेसाख्ता इन पर हंसने लगे। सोचिए, आप कुरान की आयतें पढ़ने जाएं कहीं और लोग आप पे हंसने लगें तो कैसा होगा आपका कॉन्फिडेंस? और हमने इन्हें जो निशानी भी दिखाई, या हम इन्हें जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी जड़ी होती थी, और हमने इन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो बाज आ जाएं। और उन्होंने कहा है, जादूगर हमारे लिए अपने रब से इसकी दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान कि हम राह पर लग जाएंगे। फिर जब हमने वो अजाब उनसे हटा लिया तो उन्होंने इसी वक्त अपना कौलो करार तोड़ दिया। और फिरौन ने अपनी कौम में मनादी कराई और कहा है, मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं, और मेरे महलों के नीचे ये नहरें बह रही हैं, क्या तुम देखते नहीं? क्या मैं बेहतर नहीं बनिस्बत इसके जो बेतौकीर यानी बेइज्जत है और साफ बोल नहीं सकता। मूसा लुकनत वाले थे, उनको ताना दिया जा रहा है। अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं आ पड़े, या इसके साथ परा बांधने वाले फरिश्ते ही आ जाते हैं, यानी बादशाहों के आगे पीछे लोग फिर रहे होते हैं। ये कैसा सीधा साधा नबी है कि बस आता है और चला जाता है और कोई इसका प्रोटोकॉल ही नहीं है। बस इसने अपनी कौम को बहलाया फुसलाया और उन्होंने इसकी मान ली। यकीनन वो सब ही नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया। नोट करिएगा इस जुमले को। और सबको डबो दिया, बस हमने इन्हें गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। यहाँ कौम मूसा और कौम मोहम्मद का तकाबुल करते हैं। आयत 50 में बनी इसराइल को फिरौन से मूसा ने निजात दिलाई मगर कौम ने इनकी कदर ना की। पहली मरतबा अरब के मुशरिक माहौल में अल्लाह के नबी मबूस हुए मगर आपकी कौम ने भी कदर ना की। फिरौन ने मूसा को अपनी शान और शौकत की वजह से हकीर जाना। कुरैश के सरदारों ने अपनी सरदारी के ज़ोम में अल्लाह के नबी को हकीर जाना। फिरौन और उसकी कौम ने मूसा के पैगाम और मौजज़ों का मजाक उड़ाया। कुरैश मक्का ने अल्लाह के नबी की नबूवत और कुरान का मजाक उड़ाया। हमने क्या करना है? वो कुछ नहीं करना जो कुरैश मक्का ने नबी के मामले में किया। गुज़श्ता अकवाम के हालात से सबक लेना है, अहद नहीं तोड़ना, नाफरमान नहीं होना और सरकशी नहीं करनी। आयत 57 से 67, रुकू नंबर 12। अहले ईमान के सिवा सब दोस्तियाँ बेकार। यानी अब यहाँ हमें अपनी दोस्तियों के किबले दुरुस्त करने का हुक्म दिया जा रहा है। वलम्मा दुरिबनु मरियम मसला। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगती है और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। तुझसे इनका ये कहना महज झगड़े की गरज से है, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बंदा ही है जिस पर हमने एहसान किया और उसे बनी इसराइल के लिए निशाने कुदरत बना दिया। और अगर हम चाहते तो तुम्हारे बस फरिश्ते पैदा कर देते जो ज़मीन में जानशीनी करते। और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, बस तुम क़यामत के बारे में शक न करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सीधी राह है। और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन तुम्हारा सरीख दुश्मन है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़े लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ और इसलिए आया हूँ कि जिन बास चीज़ों में तुम मुख्तलिफ हो इन्हें वाज़ेह कर दूँ, यानी इख्तलाफ करते हो तो तुम्हारे इख्तलाफात का फैसला कर दूँ। बस तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहा मानो। मेरा और तुम्हारा रब फक्त अल्लाह ताला ही है, बस तुम सब इसकी इबादत करो, राह रास्त भी यही है। फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया, पर जालिमों के लिए खराबी है दुख वाले दिन की आफत से। ये लोग सिर्फ क़यामत के मुंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े और इन्हें खबर भी ना हो। उस दिन, ये जुमला नोट कर लीजिए, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें नेक लोगों का और हमें नेक लोगों की दोस्ती में एक दूसरे के साथ जमा कर दे। हज़रत ईसा की जो बात हुई उस पर एक हदीस है तफसीर इब्ने कसीर से, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत 57-59 है। हज़रत ईसा का पैगाम क्या था? अल्लाह का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, इसको अपना लो। जो अल्लाह ने मुझे हिकमत अता की है इसकी इताअत करो। तासुब और बेजा ज़िद को छोड़ दो। आपने मैंने क्या सीखा? नाहक झगड़े नहीं करने, रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह से डर के रहना है। और साथ ही साथ ये सीखा कि जो कौमें अपने नबियों की कदर नहीं करती वो बर्बाद हो जाती हैं। आगे जी रुकू नंबर 13, 68 से 89, आखिरी रुकू है सूरत ज़ुख़रुफ़ का। मती फरमा बरदार बन के रहना है। या इबादी ला खौफ़ुन अलैकुमुल यौम। बहुत प्यारे तरीके से या इबादी इन बारों में आप नोट करेंगे। मेरे बंदो, आज तुम पर ना तो कोई खौफ है और ना तुम गमज़दा होंगे। और जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वो मुसलमान यानी फरमा बरदार, तुम और तुम्हारी बीवियाँ हशाश बशाश राजी खुशी जन्नत में चले जाओ। इनके चारों तरफ से सोने की रकाबियाँ और सोने के गिलासों का दौर चलाया जाएगा। इनके जी जिस चीज़ की ख्वाहिश करें और जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएं वहाँ सब कुछ होगा और तुम इसमें हमेशा रहोगे। यही वो बहिश्त है कि तुम अपने आमाल के बदले इसके वारिस बनाए गए हो। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। बेशक गुनाहगार लोग दोजख के अजाब में हमेशा रहेंगे। यह अजाब कभी भी इनसे हल्का ना किया जाएगा और वो इसी में मायूस पड़े रहेंगे। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही जालिम थे, और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा रहना है, हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत रखते हैं। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है? तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और इनकी सरगोशियों को नहीं सुन रहे या नहीं सुन सकते? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास ही लिख रहे हैं। आप कह दीजिए, अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। आसमान ज़मीन और अर्श का रब जो कुछ बयान वो करते हैं इससे पाक है। अब आप इन्हें इसी बहस और मुबादले और खेल कूद में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से सबका पड़ जाए जिसका ये वादा दिए जाते हैं। वही आसमानों में माबूद है, ज़मीन में भी वही काबिल इबादत है। क्या पता चला ज़मीन और आसमान का रब एक है। वो बड़ी हिकमत वाला और पूरे इल्म वाला है, और वो बहुत बरकतों वाला है जिसके पास आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की बादशाहत है, और क़यामत का इल्म भी इसके पास है, और उसी की जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो शिफात करने का कुछ इख्तियार नहीं रखते। हाँ, शिफात के मुस्तहिक तो वो हैं जो हक बात का इकरार करें और इन्हें इल्म भी हो। इसलिए अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि इन्हें किसने पैदा किया है, तो यकीनन जवाब देंगे कि अल्लाह ने। फिर ये कहाँ उल्टे जाते हैं, और इनके पैगंबर का अक्सर ये कहना कि मेरे रब, यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। बस आप इनसे मुंह फेर लें और कह दें अच्छा भाई सलाम, इन्हें अन करीब खुद ही मालूम हो जाएगा ये कौन सा सलाम है। सलामे मुतारिका। एक होता है तहिया, तहिया कहते हैं वक्ते मुलाकात सलाम। आप किसी को मिलते हैं आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे कल्चर में किसी से रुख्सत हो तो क्या कहते हैं? खुदा हाफिज़। ये जो खुदा हाफिज़ है ना, ये सलाम मुतारक है कि हम तुमसे बहस नहीं करते, यानी बहस और झगड़ों में नहीं पड़ते। क्या देखा कि अल्लाह अपने प्यारे बंदों को क्या क्या देगा। अल्लाह आपको सबको भी अता फरमाए। नंबर एक, खौफ और गम से निजात। फिर आपके अजवाज भी जन्नत में जाएंगे। आइए हम सब एक अब दूसरे के जौज यानी साथियों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबके शोहरों को आपके साथ जन्नत में जगह दे, आपकी बीवियों को आपका साथ दे दे। हम सब दुनिया में ही इस काम में, इस दीन के रास्ते में भाग भाग के निकलें ताकि अल्लाह के काम हो। और याद रखिए, जब तक मियाँ बीवी या जोड़ा या फैमिली मिलकर काम नहीं करते, काम फैलता नहीं है, फूलता नहीं है, और घर से फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होती। वरना आप दिन ब दिन बिजी होती जाएंगी मियाँ साहब, फिर और कामों में पड़ जाएंगे। फिर आपकी ये घर वाली, आपकी दोस्तें ताना देंगी, देखो मियाँ दूसरी शादी कर लेंगे, क्योंकि आप तो अब उनको टाइम ही नहीं देती। तो इस फितने के आने से पहले क्या कीजिए, शौहरों को साथ मिला लीजिए। अच्छी बीवियाँ अपने शौहरों को साथ लेके चलती हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ती हज उम्रे पे भी जाते हुए। चलिए, और कौन, लजीज मशरूबात भी होंगे और खाने भी मिलेंगे और इज्जत और इकराम भी होगा। I-77 पे हदीस सुन लीजिए। सुनन दारमी की रिवायत है, 2846, अबू हुरैरा रावी हैं। क़यामत के दिन मौत को खाकी रंग के मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान इसे खड़ा कर दिया जाएगा। फिर पुकारा जाएगा जन्नत वालों, तो ऊंची गर्दन करके देखने लगेंगे। फिर कहा जाएगा जहन्नम के मकीनों, चुनाचे वो भी गर्दने ऊंची करके देखेंगे और समझेंगे कि अब छुटकारे का वक्त आ गया, शायद हमें छुट्टी मिलने लगी है, हमारे लिए निजात के रास्ते हैं। नहीं, उस वक्त इस मेंढे यानी मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा अब हमेशा ज़िंदा रहना है, मौत नहीं आएगी। और एक और रिवायत में आता है कि अगर कोई खुशी से मर सकता तो जन्नती इस पैगाम को सुनकर मर जाते, और अगर कोई गम से मर सकता तो गम से मर जाते। ज़रा सोचिए तो सही, वही फरीकुम फिल जन्ना व फरीकुम फिस सईर। मरने के फौरन बाद मैं किधर जाऊंगी? आप कहते हैं किस कब्रिस्तान में दफनाएंगे, इधर उधर ये वो। नहीं छोड़िए, ये तो दुनिया वालों के खेल हैं, आप और मैं अपनी असल जगह पे पहुंच जाएंगे। फिर इसी तरह 86 पे एक हदीस है अबू हुरैरा से, बुखारी नंबर 86, आयत भी 86 और वो हदीस का नंबर भी 86 ही है। अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क़्यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा बहरामंद आपकी शफात से कौन होगा, यानी आप किसकी सिफारिश करेंगे? आपने फरमाया, बेशक मुझे यकीन था कि अबू हुरैरा, तुमसे पहले कोई ये बात मुझसे नहीं पूछेगा। कुछ बड़े जीनियस और बड़े माशाल्लाह ज़हीन स्टूडेंट्स होते हैं, ये उनमें से थे। इस वजह से कि मैंने तुम्हारी हिर्स हदीस यानी हदीस हासिल करने की हिर्स को जान लिया था। तो सुन लो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद मेरी शिफात से क़यामत के दिन वो शख्स होगा जो अपने खालिस दिल से या अपने खालिस जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। अल्लाह आपको मुझे मुखलस बना दे। क्या सीखा? फरमाबरदार बन के रहना है, ईमान लाना है, जुल्म नहीं करना, हक को नापसंद नहीं करना, हक के साथ गवाही देनी है और दरगुजर करना है। खूबसूरत सूरत पूरी हुई और